الحمد لله ذو المجد والعلا والهيبة والثناء عظيم الرضا منبع الجود والعطاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمد لله ہماری اس نو روزہ پروگرام کا آج چوتھا دن ہے اور انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے تقلید کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو ہوگی. جس طرح کہ ہم نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے کہ جن سے اہل سنت کے عقائد مستحکم ہوں, مضبوط ہوں, اور جن پر اعتراضات کر کے مخالفین اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں. چار امام فقہ کے جن کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی, پوری دنیا میں, اور یہ سب اہل سنت ہیں اور یہ سارے مسالک اپنی جگہ درست ہیں. ان میں سے کسی ایک کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ نے قرآن و حدیث کو اپنا ماخذ بنایا, ان سے مسائل کا استخراج کیا اور ایک ایک مسئلے پر گفتگو کی, بحث و مباحثہ کیا اور پھر اس کا حد تلاش کیا اور ہمارے لیے آسانی فرما دی. اب ہم کیونکہ مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مقلد ہیں, یعنی وہ کسی امام کو نہیں مانتے, نہ امام ابو حنیفہ, نہ امام مالک, نہ امام شافعی, نہ امام احمد بن حنبل, کسی کو نہیں مانتے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, اسی لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. غیر مقلد جو کسی امام کی تقلید نہ کرے ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد. اب وہ اس قسم کی باتیں, اعتراضات, شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اہل سنت کے عقائد کو متزلزل کیا جا سکے. تم کیوں امام اعظم کی تقلید کرتے ہو؟ جب حدیث موجود ہے تو ان کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت؟ भाई सोचने की बात है, क्या उनका फरमान उनका फिका क्या कुरान और हदीस से माजरदा इख्तिलाफ रखता है? क्या उन्होंने अलग से कोई नया मसलक नया दीन ईजाद किया माजरदा? ऐसा नहीं, कहते नहीं जी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन वो तो किसी की तकलीद नहीं करते थे, उनका तो कोई इमाम नहीं था। फिर एक क्लिप अभी मेरे सामने आया कि उनके एक आलिम बल्कि एक नौजवान आलिम थे, पता नहीं आलिम भी थे या नहीं थे, तो वो ये कह रहे हैं कि देखो जी ये मानते हैं इमाम आजम को और उनकी विलादत हुई 80 हिजरी में, तो अब बताओ कि 80 साल तक ये मुसलमान जो थे किसी इमाम के पीछे चले, इन्होंने किसी इमाम की तकलीद की, किस इमाम की इत्तबा की, किस इमाम के फिका पर चले? ये सहाबा जो थे वो किसी की तकलीद नहीं करते थे, ताबईन किसी की तबलीग नहीं करते थे, इस किस्म के एतराजात। और फिर ये कहते हैं कि वो सिर्फ हदीस को मानते थे इसलिए वो अहले हदीस, इस किस्म के एतराजात वो करते हैं। तो हमने इसीलिए आज अपना उन्वान सुखन यही बनाया कि तकलीद की जरूरत और अहमियत। बड़े गौर से समाप्त फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम सवालात के जवाबात भी आपको मिलेंगे। तकलीद क्यों करते हैं, तकलीद क्यों जरूरी है, इसकी वजह क्या है, ये भी आपको पता चल जाए। आइए सबसे पहले ये देखें कि तकलीद के माना क्या है। हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ना तकलीद तकलीद, हम फला की तकलीद कर रहे हैं, हम फला की तकलीद कर रहे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं, और वो लोग गैर मुकल्लिद हैं वो किसी की तकलीद नहीं कर रहे। तो आप पहले ये समझें कि तकलीद कहते किसको है। तकलीद का एक है लुगवी माना, अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी तकलीद का माना बयान करते हुए लिखते हैं, गर्दन में हार डालने को तकलीद कहते हैं, किसी शख्स पर किसी मनसब की जिम्मेदारी डालने को तकलीद कहते हैं, किसी चीज के अहाते को भी तकलीद कहते हैं। जिस तरह के कुरान करीम में इरशाद हुआ, लहू मकालीदु समावात वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानो जमीन का अहाता किए हुए। अब ये तो हुआ उसका लुगवी माना, अब एक है उसका इस्तेलाही माना। अल्लामा नूवी तकलीद का इस्तेलाही माना बयान करते हुए लिखते हैं, मुज्तहिद के कौल को कबूल करना और इस पर अमल करना ये तकलीद है। मुज्तहिद के कौल को कबूल करना और उस पर अमल करना। अब आप कहेंगे मुज्तहिद कौन? देखिए कुरान और हदीस को समझना हर इंसान के बस का काम नहीं, ठीक है ना। कुरान मजीद फरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और उसकी तशरी की है अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ कुरान ने कहा ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी तशरी फरमा, एक एक आयत का शान नुज़ूल, एक एक आयत के अहकाम, किस मसले में नाजिल हुई, किस वाक़े में नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, उसका मकसद क्या है, सब सरकार द्वारा हमारे सलातोसलाम ने बयान फरमा दिया। लेकिन एक आम मुसलमान जो अरबी से नाबलद है, अच्छा जो अरबी जानता है वो भी पूरी तरह अगर महारत नहीं रखता तो नहीं समझ सकता। बहुत से अल्फाज ऐसे जिनके दो माना है, बहुत से ऐसे जिनके तीन माना है, कुछ कुरान करीम की आयात ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं, ठीक है कुछ मोहकम है, इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं। तो याद रखिए हर इंसान कुरान और हदीस से मसाइल इसका इस्तखराज नहीं कर सकता, मसाइल हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि कुछ लोग हों जो दीन का इल्म हासिल करें, उसमें मुकम्मल महारत और दस्तरस हासिल करें। अच्छा आप एक होता है आलिम, उसके बाद मुफ्ती, फिर मुहद्दिस, फिर फकीह, इस तरह के दर्जे बढ़ते चले जाते। जिसने जिस फील्ड में मेहनत की वो उसी में आगे बढ़ गए, और अगर उसने मुकम्मल तमाम चीजों पर उबूर हासिल कर लिया, قرآن پر اس کو مکمل عبور ہے، احادیث پر مکمل عبور ہے، احادیث کی اسناد وہ جانتا ہے، احادیث کی صحت وہ جانتا ہے، احادیث کے درجے وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا غریب ہے، حسن لذات ہی حسن لغیر ہی، جو بھی اس کے درجے ہیں، تو پھر وہ مجتہد کہلاتا جب مکمل عبور حاصل کر لے. اب کیا ہے؟ اب وہ اجتہاد کر سکتا ہے، جو نئے مسائل پیش آئے نا تو وہ اپنی طرف سے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، اس پر تقلید واجب نہیں، وہ خود مجتہد ہے. اب کیا ہے؟ لیکن عام مسلمانوں پر تقلید واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. آپ کسی کے پیچھے چلیں، کسی کو فالو کریں، کسی کو اپنا رہبر بنائیں، کسی کو اپنا رہنما بنائیں، یہ لازم ہے، ورنہ آپ کیسے عمل کریں؟ آپ سوچیں نا، قرآن و حدیث پر، احکامات پر آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا اصطلاحی معنی جو علامہ دھوبی نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں مجتہد کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تقلید ہے. یہ کیا ہے؟ تقلید. اب آپ نے سمجھ لیا، مجتہد کے قول کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. مثلا ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. انہوں نے فقہ کے جو جو اصول مرتب کیے، جو جو چیزیں انہوں نے بتائی، جو جو چیزیں انہوں نے سمجھائیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، آنکھ بند کر کر عمل کرتے ہیں. ہم ان کی ذات پر بلینک فیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے ان لوگوں کا کہنا کیا ہے، یہ کہتے نہیں کہ تقلید ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے. آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ قرآن سے براہ راست مسائل نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ اتنا علم رکھتے ہیں کہ احادیث سے براہ راست مسائل کا استخراج کر سکے؟ نہیں. اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلا جائے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلا جائے. اب آئیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی حکم دیا کہ تم کسی کے پیچھے چلو. پہلے ہم قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ تقلید کیوں ضروری ہے، ہم کسی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، ہم کسی کی اطاعت و فرما برداری مسائل میں کیوں کرتے ہیں. سورہ نحل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. پوچھو اہل ذکر، مراد اہل علم ہے. اچھا کیوں پوچھو؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہیں جانتے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لو. نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اور یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو پہلی بات تو اسی سے پوچھیں گے جس کو اپنا بڑا سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے پوچھیں گے جس کو عالم سمجھیں گے، اسی سے پوچھیں گے جس کو اپنا استاد یا مذہبی پیشوا سمجھیں گے. ہر ارے گھر سے تو آدمی نہیں پوچھتا نا کہ بھائی کوئی روڈ پہ سے گزر رہا ہے، بھائی ادھر آ جانا، مجھے مسئلہ بتا دو. نہیں، آپ دیکھیں گے یہ عالم ہے، یہ مستند عالم دین ہے، یہ رہبر بننے کے قابل ہے، یہ مذہبی رہنما بننے کے قابل ہے، تب آپ پوچھیں گے، پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز، جب وہ مسئلہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. آپ نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، اس نے آپ کو مسئلہ بتایا، اس مسئلے کا حل بتایا کہ اس طرح آپ کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جب آپ نے عمل کیا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی کو آپ نے اس کو اپنا بڑا، اپنا پیشوا، مذہبی رہنما مان کر سوال کیا. اور قرآن جی کہہ رہے، فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو پہلی آیت اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے، अल्लाह तबारक वताला ये चाहता है कि अगर अवाम नहीं जानते वो उलमा से पूछें और उस पर अमल करें। ठीक है, दूसरी आयत सूरह निसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहन लजीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और उलुल अम्र मिनकुम जो तुम पर सरपरस्त हैं, मेहरबान हैं, हाकिम हैं, जो भी आप कहें उनकी इताअत। अब यहां पर एक सवाल है कि उलुल अम्र से मुराद कौन है। बाद उलमा ने लिखा कि उलुल अम्र से मुराद हुकूमत वक्त, हाकिम वक्त, ये उलुल अम्र है भाई, वही तो हुक्म देगा ना, वो हुक्म देगा आपको करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी हुक्म दे दे आप उस पर अमल कर लेंगे। कुरान ने कहा है उलुल अम्र मिनकुम, हाकिम की इताअत करो, हाकिम की फरमा बरदारी करो। क्यों? अगर हाकिम दीन के खिलाफ हुक्म दे, अगर हाकिम दीन की मुखालफत में हुक्म दे, अगर हाकिम गुनाह का हुक्म दे, तब अमल करो, अमल करेंगे नहीं। उलुल अम्र मिनकुम, अगर हुकूमत वक्त ऐसी हो, हुकूमत ऐसी हो और हाकिम वक्त ऐसा हो जो दीन के बिल्कुल मुताबिक चल रहा हो, जहां पर दीन की बालादस्ती हो, जहां पर शरीयत की बालादस्ती हो, जहां पर हर काम कुरान और हदीस के सुन्नत के मुताबिक हो रहा हो, जैसा कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की हुकूमत, उनके खिलाफत, उस वक्त उलुल अम्र मिनकुम हकीकत में वही थे, इसलिए कि वो दीन के खिलाफ एक कदम भी नहीं चले, बल्कि जो चला उसको इबरतनाक सजा दे दी। शरीयत की बालादस्ती उन्होंने कायम की, अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। तो तब आप ये कह सकते हैं कि उलुल अम्र मिनकुम से मुराद हाकिम वक्त और उसकी इताअत लाजिम। लेकिन अब अगर आजकल आप देखें तो इल्ला माशाल्लाह, यहां तो मामला ही अलग है, हर काम दीन के खिलाफ हो रहा है, हर काम दीन के नुकसान में, मुल्क के नुकसान में, कौम के नुकसान में हो रहा, तो फिर कैसे उलुल अम्र की इताअत की जाए? फिर तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई हाकिम वक्त दीन के खिलाफ आपको हुक्म दे, इताअत नहीं करनी है, गुनाह का हुक्म दे, इताअत नहीं करनी है, और अगर दीन के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो और उस मुल्क में, उस शहर में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती हो, फिर आप कह सकते हैं उलुल अम्र मिनकुम, इनकी इताअत करो। कौन? हाकिम वक्त। ठीक, बाद में कहा कि इससे मुराद उलमा भी हैं, उलमा की इताअत करो। अब आइए तीसरी आयत जो बिल्कुल वादे है तकलीद के मुताबिक। कुरान करीम में सूरह तौबा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन वलियुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअन्नहुम यहज़रून। अल्लाह फरमाता है और मुसलमानों से, अच्छा तर्जुमा भी इमाम अहले सुन्नत का, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस आयत का तर्जुमा करते हुए फरमाते हैं, और मुसलमानों से ये तो हो नहीं सकता कि सब निकले, तो क्यों ना उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करें और वापस आकर अपनी कौम को डराएं इस उम्मीद पर कि वो बचे। तर्जुमा समझ में आया? फरमाते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि सब के सब निकले, और ये हकीकत है। आप देख लें पूरा माशरा है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई जॉब करता है, किसी का कारोबार है, कोई कोई काम करता है, मुख्तलिफ काम लोग करते हैं, और ये मुख्तलिफ काम इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखे कि दुनिया का निजाम चले। ये मुख्तलिफ जहन जो है ना, सबके सबके जहन अलग है, किसी के जहन में डाला कि मैं तो कारोबार करूंगा, किसी के जहन में डाला कि नहीं मैं जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा, किसी के जहन में डाला कि मैं खेती बाड़ी करूंगा, मैं उसने जमीन ले ली, खेत पूरा लगा लिया, उसमें हल चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है। ये जो मुख्तलिफ जहन है ना, इसमें हिकमत है। अगर सबके जहन एक होते तो दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाता, दुनिया का निजाम खत्म हो जाता। आप देखें सबकी पसंद अलग है, कोई सफेद लिबास पसंद करता है तो कोई काला पसंद करता है, कोई नीला पसंद करता है, कोई लाल पसंद करता है ना। आप भी लाल पसंद करते हैं? नहीं नहीं, लाल नहीं पहनना, वो सही नहीं होगा, मसला हो जाएगा। बाकी रंग सही है, वो तो फिर खतरनाक हो जाएगा। रेड कलर जो है वो तो खतरनाक है, गाड़ी भी रोकनी पड़ जाती। तो मुख्तलिफ कलर जो है ना, ये इसीलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखी। एक वाकया ज़हन में आता है, हारून रशीद खलीफा वक्त था, उसको एक लौंडी की जरूरत थी, लौंडी कनीज। पहले जमाने में होते ना गुलाम और लौंडियां। एक कनीज आई जिसका रंग सफेद था, बिल्कुल सफेद दूध की मानी। दूसरी आई उसका रंग सिया था, कोयले की मानी। अब इसको जरूरत थी एक ही, आ गई दो। तो हारून रशीद ने कहा, भाई मुझे तो एक की जरूरत है, कि दो क्यों आ गई? तो जिसका रंग गोरा था उसने कहा, हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन, देखिए मैं आई हूं, आप मुझे रख लें, इसलिए कि सफेद कलर जो है बहुत अच्छा होता है। सफेद कलर, जो काली थी उसने कहा, नहीं काला जो रंग है वो बहुत अच्छा है, लिहाजा आप मुझे रख। हारून रशीद मूड में थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम दोनों इसी बात पर बहस मुबाहसा करो कि सफेद कलर अच्छा है या काला, जो जीत जाएगा उसी को मैं रखना। उन्होंने कहा अच्छा। अब दोनों बैठ गए, जो सफेद कलर वाली थी और जो दूसरी थी काली कलर वाली थी। तो हारून रशीद ने कहा, चलो भाई पहले कौन बोले। और जिसने ये साबित कर दिया कि जो उसका कलर है वही बेहतरीन है, उसी को मैं रख लूंगा, दूसरी को वापस, उसने कहा, हुजूर देखिए आसमान पे सितारे जो हैं सब सफेद होते, चांद सफेद, सितारे सफेद, उनकी रोशनी सफेद। हारून ने उसको देखा, जिसका रंग काला था तुम बोलो। उसने कहा, जी बेशक ये सब सफेद होते हैं, लेकिन जिस आसमान पर ये चमकते हैं वो काला होगा, जिस आसमान पर ये चमकते हैं वो काला होता है। और हकीकत है कि अगर काला ना हो तो सफेद की सफेदी पता चलेगी, भाई सफेद बादल पे सफेद चांद ढूंढने में कितना मसला होता है, होता है ना कभी मतला भर आलू दो तो चांद ही नजर नहीं आता, बेचारे रोहित लाल वाले चश्मे लगा लगा के देख रहे लेकिन नजर नहीं आ रहा, आखिर में कहते चलो भाई शहादत महसूल हो गई, हो गया हो गया, खैर बहरहाल। तो वो इसीलिए चमकते हैं कि वो आसमान सिया होता है। तो जो सफेद कलर वाली थी उसने कहा, ये सितारे सफेद, ये चांद सफेद, तो जिसका रंग काला था उसने कहा, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जिस आसमान पर ये चमक रहे हैं वो काला है, और काले की वजह से ही तो चमक रहे हैं। हारून ने कहा, अच्छा बात तो सही है, तुम बताओ। उसने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को सफेद कलर बहुत पसंद था। अब उसने रुख इधर मोड़ दिया सरकार की तरफ, तो लिहाजा सफेद कलर अच्छा है, आप मुझे रख लें। तो काली ने कहा, बेशक सफेद कलर पसंद था, लेकिन हुजूर की जो चादर मुबारक थी वो काली थी, चादर मुबारक कमली जिसे कहते ना वो काली थी। हारून फिर परेशान हुआ, अब क्या करें। फिर उससे कहा, चलो तुम बोलो। उसने कहा, सरकार का चेहरा मुबारक सफेद था, काली ने कहा, लेकिन जुल्फें हुजूर की काली थी। खैर ये तो बहुत लंबा वो चला, आखिर उसने तंग आकर कहा, चलो मैंने दोनों को रख लिया, ठीक है जाओ मैंने दोनों को रख लिया। समझ में आई ना बात? ये मैंने इसलिए सुना दिया आपकी खुश तबाही के लिए कि थोड़े से आप लोग मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाए। एक तो मसला ये है कि आप लोग आते बहुत देर से, जल्दी आना चाहिए ताकि जो शुरू का मैटर है वो ना निकल जाए। तो बात कहां से चली कोई बताएगा? नहीं पता, यही मसला है। बात कहां से चली? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तमाम लोग नहीं निकल सकते, और यह हकीकत है ना, हर आदमी इल्मे दीन हासिल नहीं कर सकता, हर आदमी मुफ्ती नहीं बन सकता, हर आदमी फकीह नहीं बन सकता, हर आदमी मुज्तहिद नहीं बन सकता। तो तर्जुमा उन्होंने यही किया, और मुसलमानों से ये हो नहीं सकता कि वो सब के सब निकले, तो क्यों ना हर गिरोह से एक जमात निकले और वो जाकर इल्मे दीन हासिल करे और फिर लोगों को आकर डराए। मतलब क्या है कि एक जमात इल्मे दीन हासिल करे, जैसे उलमा है, अब ये इल्मे दीन हासिल करते हैं, उसके बाद आकर लोगों को बताते हैं, अहकाम समझाते हैं, शरीयत के अहकाम, फिका के अहकाम, ये मसला यूं है, ये मसला यूं है, ठीक है। तो अल्लाह तबारक तआला ये बताना चाहता है और ये समझाना चाहता है मुसलमानों को कि सब के सब फकीह मुहद्दिस मुफ्ती नहीं बन सकते, सब के सब इल्मे दीन हासिल नहीं कर सकते, इसलिए एक जमात को चाहिए कि वो निकले, इल्मे दीन हासिल करे और वापिस पलटकर अपनी कौम में लोगों को डराए। डराने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात उनको बताए, गुनाहों की जो सजा है वो बताए, उनसे डरे। इस्लाम पर अहकामात, जो इस्लाम के अहकामात नाजिल हुए हैं, उनकी वदाहत करें, वो समझा जाए। तो इन तीन आयतों से ये साबित हुआ कि तकलीद जरूरी है। कुरान भी यही कहता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुकद्दस में यही फरमा रहा। ये तीन आयतें हमने पेश की, वैसे और भी आयतें, लेकिन हमने सिर्फ वक्त की तवालत के पेश नजर सिर्फ तीन पर हमने इक्तफा किया। अब आइए अहदीस मुबारका, सबसे पहले चीज क्या है? कुरान, उसके बाद हदीस। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस कुरान करीम की तशरीह करती हैं, वजाहत करती हैं। अगर अहदीस को निकाल दिया जाए तो कुरान को नहीं समझा जा सकता। कुरान को समझना है तो सरकार की अहदीस को पढ़ना है, ये तशरीह हो रही है। तिर्मिजी शरीफ की हदीस, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, फरमाते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर उमर की इत्तेबा करो, और एक रिवायत में आया इक्तिदा करो। हदीस के अल्फाज और भी है, मैंने इसको इख्तिसार के साथ बयान किया है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तिदा करो और एक में इत्तेबा करो। क्या मतलब? अब ये लोग जो कहते हैं ना कि किसी की इक्तिदा की जरूरत नहीं, किसी की इत्तेबा की जरूरत नहीं, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, ये हदीस उनकी नफी कर रही है। वरना सरकार फरमा देते मेरे पास कुरान मौजूद है पढ़ लेना, मेरी हदीस मौजूद है पढ़ लेना, नहीं, मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तिदा करो, इत्तेबा करो। क्या मतलब? सरकार जानते थे जो इनके पीछे चलेगा कभी गुमराह नहीं होगा, जो इनकी इत्तेबा करेगा कभी गुमराह नहीं है, सही है ना। और एक और हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नति वसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, लाज़िम पकड़ो मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, यानी मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका। एक और मकाम पर फरमाया अस्हाबी कल नुजू फबी अय्युहुम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब आप देखें जरा सा गौर करें, तालीम देने वाला, खा वो दुनियावी तालीम हो या दीनवी तालीम, कोई भी इल्म हो सकता है कि इस मजमे में कोई ऐसा बैठा हो जो उस्ताद हो, बल्कि कुछ बैठे भी हैं जो मेरी नजर में हैं, जो पढ़ाते हैं, लेकिन कोई उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे जिसने भी पढ़ा है वो काबिल है, वो बिल्कुल कामिल है। जाओ जाके पूछ लो, जिसको मैंने पढ़ाया वो सब के सब काबिल, सब के सब कामिल है, कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों? वजह क्या है? जब क्लास होती है ना, किसी भी इल्म की क्लास होती, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी क्लास सब काबिल, सब जहीन फतीन होशियार समझदार ऐसा नहीं होता। अगर पूरी क्लास है तो एक ऐसा निकल जाएगा जो बिल्कुल गबी कुल जहन जिसके समझ में ही नहीं आता, या अगर पूरी क्लास ही ऐसी है तो एक ऐसा निकल जाएगा जो सबसे ज्यादा काबिल सबसे ज्यादा जहीन फतीन होता है ना। और उस्ताद तो कोई दावा कर ही नहीं सकता कि आज तक मैंने जिसको भी पढ़ाया है सब के सब काबिल है। जाओ जाकर पूछ लो मेरे पढ़ाए में जितने भी तलामिदा हैं जितने मेरे शागिर्द हैं सब काबिल है। किसी ने दावा किया? नहीं, किसी ने दावा नहीं किया। हाँ दावा किया तो एक ही जात ने किया, जाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दावा क्या किया? सहाबी कन्नुजूम मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। अब इसमें दो बातें हैं, एक बात तो ये है आका ये बताना चाहते हैं मेरी शान ये है जो कोई मेरी महफिल में आया वही कामिल बन गया, जिस पर निगाहें नबूवत पड़ गई वही कामिल हो गया। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि मुझे अपने सहाबा पर इतना इतमाद है कि तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, मेरे सहाबा कभी गुमराह नहीं होंगे, मेरे सहाबा गुमराह नहीं होंगे जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। वरना होते है ना कि भाई एक साहब है नहीं नहीं उनके पीछे नहीं जाना, वो फला साहब है हाँ उनसे गलती हो गई उन्होंने सही नहीं पढ़ा चलो उनसे नहीं पूछना किसी और से पूछ लेना। नहीं, आका ने बबा के दोहर फरमाया असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुहतदीतुम इहतदीतुम, मेरे सारे साहबा आसमान हिदायत के सितारे हैं जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। इसीलिए शायर ने लिखा मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं यही अल्लाह वाले हैं यही कुरान वाले हैं, नबी का दीन इस नाम चमकाया जमाने में जिन्होंने कल गए तौहीद फैलाया जमाने में जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। कुरान ने कहा रदी अल्लाह अन्हुम वरदुअल, ये अल्लाह से राजी हो गए अल्लाह इनसे राजी हो, कितनी बड़ी सनद उनको मिली। बारह कहने का मकसद ये है कि सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है, अगर उनकी नालायक से लगे हुए जर्रे हम पर पड़ जाएं तो हमारे गुनाह माफ हो जाए, इतना बड़ा मकाम है सहाबा। तो हुजूर ने क्या फरमाया मेरे बाद अबू बकर उमर की इत्तेबा करो उनकी इक्तदा करो। गोया सरकार ये बताना चाहते हैं इत्तेबा लाजिम है इक्तदा लाजिम है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद ब खुद ये करो। ठीक आइए दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स में दो खसलतें होंगी अल्लाह ताला उसे साबिर व शाकिर लिखेगा। दो खसलत, एक दीन के मामले में अपने से बरतर को देखे तो उसकी इत्तेबा करे, पहली खसलत, और दूसरी दुनियावी उमूर में अपने से कमतर किसी को देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। समझ में आई बात? दीन के मामले में अपने से बरतर किसी को देखे तो उसकी इत्तेबा करे उसके पीछे चले, और दुनिया के मामले में किसी को अपने से कमतर देखे तब अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर आप किसी को ऐसे को देखें कि जो बिल्कुल गरीब है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करे मौला तेरा करम है तूने मुझे इससे तो बेहतर रखा इससे तो बेहतर रखा। जब खाना खाओ शुक्र अदा करो मौला तेरा करम है। कोई तो वो है कि जिसको लुकमा भी मैसर नहीं, अगर वो दोपहर को खा ले तो उसको पता नहीं शाम को मिलेगा नहीं, रात को खा ले तो पता नहीं सुबह नाश्ता मिलेगा नहीं। मौला तेरा करम है कि खाली पेट उठाता तो जरूर है, खाली पेट सुलाता नहीं। नहीं सोना खाली पेट? बताओ सोते हो? अभी 9 तारीख तक तो सोओगे नहीं, इसलिए कि रोजाना चावल मिल रहा है, बिरयानी मिल रही है ना। 9 तारीख तक तो आप खाली पेट नहीं सोएंगे, उसके बाद अल्लाह मालिक। खैर बारह, तो फरमाया कि दो खसलतें जिसमें हो अल्लाह ताला उसे साबिर और शाकिर लिख देगा। एक खसलत दीन के मामले में अपने से बरतर किसी को देखे तो उसकी इक्तदा करे, और दूसरी दुनिया के मामले में अपने से कमतर किसी को देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब आइए, सुनन अबू दाऊद, इसमें एक हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम की, जिसका मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा, यानी दीन में जो कमी बेशी हो रही होगी वो उसकी इसलाह करेगा। और हर सदी में पैदा होने वाला मुजद्दिद, चाहे वो एक हो या दो हो, तादाद में इख्तिलाफ है, वैसे तो एक ही है, उससे किसी को इनकार हो सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि उस वक्त जो भी उलमा, जो भी सुलाहा, जो भी फुकहा मौजूद होंगे, जब वो मुजद्दिद आएगा तो सबको उसी की इत्तबा करनी होगी, सबको उसी की इत्तबा करनी होगी। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व ताला हर सदी में एक मुजद्दिद उसने पैदा किया, क्योंकि 100 साल में जैसे फितने पैदा होते हैं, लोग दीन का नक्शा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर बर्रे सगीर में जब अकबर बादशाह की हुकूमत आई तो उसने दीन इलाही ईजाद किया। क्या ईजाद किया? दीन इलाही, एक नया दीन, और अपने आप को सजदा कराया, मुझे सजदा करो। अब जाहिर है हाकिम वक्त अगर कोई ना माने तो वो गिरफ्तार हो जाए, कोई ना माने तो उसको सजा मिले। अब जो आम लोग थे वो तो बेचारे डर गए, और जिनके ईमान कमजोर थे वो भी उसके पीछे चल पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके ईमान मजबूत थे, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, अल्लाह के सिवा हम किसी को सजदा नहीं करेंगे। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े फुकहा बादशाह वक्त के सामने खड़े होने से डर रहे थे। अल्लाह ने एक मर्द कलंदर पैदा किया, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी, बादशाह के सामने डट गए और उसको जाकर उसकी गुमराहियों के मुताबिक बताया, जो कुछ तू कह रहा है ये गलत है, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। आपको कैद कर दिया गया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन आपके इस आलम में हिदायत, आलम में जिहाद बुलंद करने की वजह से कितने लोग थे जो कि वहां से हटकर सही तौर पर दीन इस्लाम पर गामजन हो गए। देखा ना कि एक मर्द कलंदर खड़ा है, ना आपने उसके रौब की परवाह की, ना उसकी हुकूमत की परवाह की, ना उसके इख्तियार की परवाह की, ना उसके इख्तदार की परवाह की, सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, उसके सामने डट गए। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहज पर, वो खाक के है जेर फलक मतलए अनबार, उस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है वो गर्मी एहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर्बाद किया जिसको खबरदार। ये मुजद्दिद अल-फिसानी का कारनामा था कि आपने हुकूमत वक्त के सामने झुकने के बजाय आप सीना सपर हो गए, खड़े हो गए और बमांगे दोहर उसको ललकारा, और उसकी गुमराहियों और उसकी फितना सामानियों को बेनकाब किया, और लोगों को बताया कि दीन का सही नक्शा ये है, और जो ये पेश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے اس جرات مندانہ اقدام سے کتنے لوگ تھے جو گمراہی سے بچ کر ہدایت کی طرف گامزن ہو گئے۔ یہ ہے مجدد کا کام کہ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کر دیتا ہے، اور وہ مجدد اپنے امن سے، اپنے قول سے دین کی تجدید کرتا ہے، اور دین میں جو غلط چیزیں رائج ہوں ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے اور ان کو ایک طرف کرتا ہے، اور دین کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب آئیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے یہ ضروری نہیں، صحابہ نے تقلید نہیں کی۔ سب سے پہلے اعتراض یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا نا ابتدا میں، وہ کہتے ہیں جی ان کے امام تو اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئے، تو صحابہ جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ کس کی تقلید کرتے، ان کا تو کوئی امام نہیں تھا، اور صحابہ تو صرف حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تقلید پر اجماع امت ہے، امت کا اجماع ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمان اپنے زمانے کے علماء سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، اور اپنے سے پہلے جو گزر چکے ہیں ائمہ ان کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، اس پر اجماع ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک عورت کسی مسئلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، تو فرمایا ابو بکر سے رجوع کر، ابو بکر سے رجوع کر۔ صحیح بخاری کتاب المناقب صحابہ، یہ تو حدیث وہاں موجود ہے۔ دوسری حدیث، مدینہ طیبہ کے رہنے والے جو تھے انہوں نے حضرت ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک عورت کو ایک مسئلہ پیش آیا تھا، انہوں نے وہ ان کے سامنے پیش کیا، حضرت ابن عباس نے اس کا جواب دے دیا، تو لوگوں نے کہا ہم زید بن ثابت کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کے فتوے پر کیوں عمل کریں، ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ان کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کے فتوے پر کیوں عمل کریں۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی، حضرت زید بن ثابت بھی فتوہ دیتے تھے، حضرت ابن عباس بھی فتوہ دیتے، ٹھیک ہے نا، لوگ مانتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، وہ بتاتے تھے، لوگ عمل کرتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، سمجھ آئی بات، اگر نہ ہوتی جیسے کہ آج کل کے یہ اہل حدیث کہتے ہیں جی حدیث کافی ہے، تو صحابہ تو زیادہ حدیث جانتے تھے بھائی، وہ تو حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، براہ راست سرکار کی حدیث کو سنتے تھے، اور جو حدیثیں انہوں نے نہیں سنی دیگر صحابہ نے بھی پہنچا دی، سب تھی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ جو صحابہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے ہمیں پوچھنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا، بات سمجھ میں آئی۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب ان سے مسئلہ معلوم کیا اور انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم زید بن ثابت کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی، ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن ایک علاقہ ہے، شہر، جب بھیجا تو آقا نے ان سے پوچھا معاذ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے، کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو تم اس کا حل کیسے کرو، یعنی ایک امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کیا، उनको भेज रहे हैं यमन गवर्नर बनाकर। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब मेरे पास कोई ऐसा मसला आएगा, यानी कोई नया मसला, पुराने मसले तो सबके हाथ मौजूद है, मैं सबसे पहले किताबुल्लाह को देखूंगा, कुराने मजीद फुरकाने हमीद, मैं उसमें तलाश करूंगा, अगर नहीं तो फिर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आपकी सुन्नत, और अगर उसमें नहीं मिला फिर मैं अपने इज्तिहाद से फैसला करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर खुश हुए, आपने अपना दस्ते मुबारक उनके सीने अकदस पर फेर दिया और फरमाया, खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस बात की तौफीक दी जिसको मैं पसंद करता हूं, खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस बात की तौफीक दी जिसको मैं पसंद करता हूं। अब देखिए, इस हदीस शरीफ से कई चीजें साबित हुई। पहली चीज तो यह साबित हुई कि मुसलमानों के लिए हर चीज का माखज और मर्जा जो है वो कुरान करीम, ठीक है ना, हम जो भी मसला देखते हैं ना हम कुरान से देखते हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान ऑथेंटिक है, जो हो चुका है वो कुरान में है, जो हो रहा है वो कुरान में है, जो आइंदा होने वाला है वो कुरान में है, दरियाओं का जिक्र कुरान में है, समंदरों का जिक्र कुरान में है, नहरों का जिक्र कुरान में है, पहाड़ों का जिक्र कुरान में है, कुरान में रातें भी हैं दिन भी, कुरान में शयातीन भी हैं जिन भी, अरे कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं, तमाम उलूम का माखज और मर्जा और खजाना जो है वो किताबुल्लाह है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुरान, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं पहले किताबुल्लाह को देखूं, कुरान करीम, अगर उसमें नहीं तो फिर आपकी सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई मसला ऐसा भी हो सकता है, अब आप देखते ना जैसे कि नए नए मसाइल पेश आ रहे हैं, पहले हम ऊंटों पर सफर करते थे, खच्चरों पर, घोड़ों पर, अब जहाजों में सफर कर रहे, ठीक है, सवारी पर नमाज का मसला, अगर घोड़े पे जा रहे हैं तो उसको रोक लिया, नमाज पढ़नी किबला किधर है इधर कर लिया, ठीक है, और अगर रेल में जा रहे हैं तो उसमें भी देख लिया, और अगर जहाज में जा रहे हैं तब, और रेल में आपने नियत बांध ली और किबला इधर था और रेल इधर मुड़ गई तब क्या करें, ये नए मसाइल हैं ना सर, कितने मसाइल हैं, एक तो नहीं बेशुमार मसाइल, तो ये जितने भी मसाइल हैं उलमा की जिम्मेदारी है उन्होंने इसको हल किया अपने इल्म के जरिए, अपने इज्तिहाद के जरिए, नई नई चीजें वजूद में आई, उस जमाने में वो नहीं थी तो जाहिर है वो मसला भी नहीं था, जब नई चीजें वजूद में आ गई तो मसले भी नए पैदा हो गए। इसी चीज को नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला, और साथ साथ सरकार ये भी बताना चाहते हैं देखो मेरा सहाबी किस तरह फैसला करेगा, पहले कुरान से फिर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अपने इज्तिहाद। तो इससे ये पता चला कि इज्तिहाद जो है वो किया जा सकता है, लेकिन तकलीद इसलिए जरूरी है कि हर मुसलमान इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि वो कुरान करीम से मसाइल निकाल सके, वो अहदीस से मसाइल का इस्तखराज कर सके। अब ये जो इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाई, ये चारों इमाम जो हैं इनके चार फिका हैं और चारों अपनी जगह दुरुस्त हैं, चारों अपनी जगह दुरुस्त है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, इनमें तो इख्तलाफ है, मसलन इमाम शाफई रफ़ा दैन करते हैं, इमाम अबू हनीफा नहीं करते, भाई हम लोग हनफी हैं ना, हम नमाज में रफ़ा दैन करते हैं, बताइए, अरे बोलो ना करते हो या नहीं, नहीं करते ना, हाँ वो कमाल भाई ने हाथ हिलाया कि नहीं करते, इसका मतलब यही नहीं करते, बाकी शायद सारे कर रहे, हम क्यों नहीं करते, इमाम आजम अबू हनीफा ने मना किया, आप कहेंगे सरकार ने तो किया था, तो इमाम शाफई ने वो हदीस ली जिसमें रफ़ा दैन का हुक्म, इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस ली जिसमें मना कर दी, दोनों अपनी जगह दुरुस्त,
और सरकार ने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, ये इख्तलाफ जो है ये रहमत है। अच्छा, ये इख्तलाफ वो नहीं है जो हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो रहमत नहीं है, वो तो जहमत है, वो तो परेशानी है। ये फिका का इख्तलाफ है, ये मसाइल का इख्तलाफ है, ये रहमत है। और इसमें अल्लाह ताला की एक हिकमत और है, और वो हिकमत क्या है? रफाए दैन करना सरकार की सुन्नत है, और ना करना ये भी सरकार की सुन्नत है। इमाम आजम ने ये हदीस ले ली, इमाम शाफई ने वो हदीस ले ली, अल्लाह ने इन चारों इमामों को इसीलिए रखा कि ये सारे लोग हदीसें ले लें, मेरे नबी की सारी सुन्नतें जारी रहे, मेरे नबी की सारी सुन्नतें जारी रहे। इमाम आजम अबू हनीफा ने कौन सी हदीस ली? जब सहाबा ने रफाए दैन किया ना, तो सरकार ने फरमाया मान याराकुम राफी अईदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलु शुमसिन उस्कुनु फिस्सला, मैं तुम्हें देखता हूं कबीले बनु शब्द के घोड़ों की दुमों की तरह, तुम अपने हाथों को क्यों हिला रहे? कबीले बनु शब्द बेशुमार घोड़े थे, अब जाहिर है घोड़े तुम हिलाते ना, तो हुजूर ने फरमाया मैं देखता हूं कि तुम कबीले बनु शम्स के घोड़ों की दुमों की तरह अपने हाथों को क्यों हिलाते हो? उस्कुनु फिस्सलात, नमाज में सुकून इख्तियार करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो जो रफाए दैन कर रहा है हम उसको बुरा नहीं कहते, इमाम शाफई के कौल पे अमल कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको बुरा नहीं कहते, इमाम अबू हनीफा के कौल पे अमल कर रहा। तो ये इख्तलाफ तो रहमत है, और हिकमत ये है मेरे रसूल की सारी सुन्नतें जारी रहे, सारी सुन्नतें जारी रहे। अच्छा, सहाबा ने अपने दौर में इश्तेहाद किया। देखिए, जो नए मसाइल आते थे ना, सहाबा इश्तेहाद करते थे, गौर फिक्र करते थे। मुरूर अय्याम के साथ साथ हालात बदलते हैं ना, नई चीजें आती हैं, नए मामलात होते हैं, तो उसमें सोचना पड़ता है नए मसाइल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को 7 हुरूफ के मुताबिक पढ़ने की इजाजत दी। कितने हुरूफ? 7। 7 हुरूफ पर पढ़ने की इजाजत दी। ये जो हम कहते हैं ना सबा किरात, ये वही सारी हैं। फिर क्या हुआ? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में जब यही हुरूफ लोगों की इल्मी कमी की वजह से आपस में इंतशार और इख्तलाफ का सबब बने, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने उन नुस्खों को मगा कर उनको जला दिया, और सिर्फ लुगत कुरैश के मुताबिक कुरान को लिखने की इजाजत दी, और उसके नुस्खे लिखवा कर पूरी सल्तनत इस्लामिया में भेज दी। सिर्फ एक लुगत, लुगत कुरैश, ताकि इंतशार ना हो, इख्तलाफ ना हो। अब इसकी एक अलग तफसील है, लेकिन उसका अभी वक्त नहीं है। इससे ये पता चला कि सहाबा इज्तिहाद करते थे, जो नए मसले आते थे ना उसमें इज्तिहाद करते थे, और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी किया। मसलन सरकार ये चाहते थे कि बैतुल्लाह को मिसमार करके, यानी उसको ज़ईफ करके दोबारा से बिनाए इब्राहिमी पर तामीर कर, नहीं तामीर कर, लेकिन फिर सरकार ने कहा नहीं, जो है इसको छोड़ दो। जब लोगों ने पूछा, फरमाया मुझे अंदेशा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर इसको तोड़ना बनाना, तोड़ना बनाना ये खेल हो जाएगा, और जो भी आएगा वो दोबारा से बनाने की कोशिश करेगा। आप देखते हैं ना, अब जो हरम है, हरम की तौसी हुई ना, मसलन शाह फहद का दौर आया तो उन्होंने बाबे फहद बना दिया, पूरी इमारत बना दी एयर कंडीशन। शाह अब्दुल्ला का दौर आया तो उन्होंने बाबे अब्दुल्ला बना दिया, उस तरफ सफा मरवा की दूसरी तरफ उन्होंने बना, यानी जिसका दौर आया वो चाहते ना कि मेरा नाम हो, मैं कुछ करूं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं चाहता था कि काबे को बिना इब्राहिमी पर कर दूं, लेकिन इस डर से मैंने ऐसा नहीं किया कि अगर मैंने इसको तोड़ा फिर बनाया तो ये तोड़ना बनाना लोगों के लिए खेल हो जाएगा, फिर जो भी आएगा वो यही कोशिश करेगा मैं तोड़ के और अच्छी तरह बनाना। और होता ये, वो कहते और दीवारें ऊंची कर दो, कोई कहता संगे मरमर लगा दो, कोई कहता ये कर दो। 12। अच्छा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन उन्होंने भी इज्तिहाद किया और जो नए मसाइल आए थे जिससे दीन को फायदा हो, दीन की तशहीर हो, दीन की शान नजर आए, उन्होंने उस पर अमल किया। मिसाल के तौर पर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के दौर में तरावी की जमात पहली मर्तबा हुई। यह आप सब जानते हैं, हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में बइख्तिलाफ रिवायत दो या तीन दिन तरावी की नमाज पढ़ी, यानी बा जमात साहबा ने आपके पीछे पढ़ी। तीसरे दिन साहबा की इतनी कसरत हुई कि मस्जिद नबवी में जगह नहीं थी, यहां से वहां तक सब पुर हो गया, सब भर गया। आज हुजूर हमें एक नई नमाज पढ़ा रहे हैं, एक नई इबादत है, साहबा इस शौक में हैं कि हम ये इबादत करें और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में कोई मकाम हासिल कर ले। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ नहीं लाए, दरवाजा बंद, साहबा बैठे मस्जिद में। पूरी रात गुजर गई, पूरी रात इंतजार कर रहे हैं, अभी ये दरवाजा खुलेगा, आका तशरीफ लाएंगे, नमाज तरावी पढ़ाएंगे, दरवाजा नहीं खुला। पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई, फजर की अजान हुई, अब काशाने नबुव्वत का दरवाजा खुलता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज मुसल्ला इमामत पर फजर की नमाज पढ़ाई और अपना चेहरा लोगों की तरफ करके चेहरे अनवर बैठ गए। फिर सरकार ने फरमाया, सुनो, तुम्हारी रात की हालत मुझ पर पोशीदा नहीं थी, यानी जिस जौक और शौक से तुम नमाज तरावी पढ़ने आए थे ये मुझसे पोशीदा नहीं था, लेकिन मैं कसदन इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम्हारे जौक और शौक को देखकर अल्लाह ताला इसे फर्ज ना करार दे दे और आगे चल के तुम इसको अदा करने से आजिज ना हो। कितना फिक्र है नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का। अच्छा, ये वाकया हो गया, अब इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने पर्दा फरमा लिया। फिर दौर आया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने, इसी तरह तरावी हुई, कोई जमात नहीं हुई, दो चार इधर हैं तो दो उधर हैं, तीन इधर हैं, अलग अलग, एक इमाम के पीछे नहीं, सब अपनी अपनी तरावी पढ़ रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, उनका विसार हो गया। फिर दौर आया फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने, और उनकी सीरत आप उठाकर देखें, जितने कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं सब तजदीदी हैं, तजदीदी नए कारनामे हैं, और ऐसे कारनामे हैं कि उनका फायदा आज तक पहुंच रहा है। पुलिस का महकमा फारूक आजम ने कायम किया, जेल खाने फारूक आजम ने कायम किए, बैतुल माल फारूक आजम ने कायम किया, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने फारूक आजम ने कायम किए, जानवरों के लिए चरागाहें फारूक आजम ने कायम की, नहरों का निजाम फारूक आजम ने बनाया, अदलिया को मजबूत फारूक आजम ने किया, सारी चीजें उन्होंने की। ये तो चंद मैंने आपके सामने बयान। तो जब आपका दौर आया, रमजान मुबारक का महीना आया, तो आपने देखा कि दो सहाबा इधर हैं, दो इधर हैं, चार उधर हैं, सब तरावी पढ़ रहे, तो आपने क्या किया, सहाबा की एक मीटिंग की, बुलाया जलीलुल कदर सहाबा और उनसे ये कहा कि मैं ये देखता हूं कि ये सब के सब जो हैं मुंतशिर होकर तरावी पढ़ रहे, एक इमाम के पीछे नहीं, अलग अलग, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम में से कोई एक इमाम बन जाए, हम सब मुक्तदी बन जाए, इस्लाम की शान नजर आए, इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा हो, कितनी अच्छी बात। सबने कहा बात सही। अच्छा, उसकी असल तो मौजूद थी, कोई नया काम नहीं था, हुजूर अलैहिस्सलाम ये कर चुके थे, सरकार ने बाजमात पढ़ाई थी, तो एक दलील भी मौजूद थी। तमाम साहबा ने कहा यह ठीक। तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला ने, जो हाफिज कुरान भी थे और कारी कुरान भी थे, अल्लाह ने उनको बेहतरीन आवाज अता फरमाई, फारूक आजम ने उनको बुलाया, फरमाया उबई तुम हमारे इमाम बन जाओ, हम सब तुम्हारे मुक्तदी बन जाए।
उन्होंने कहा ठीक। तो वो खड़े हो गए मुसल्ला इमामत पर।
तो सैयदना फारूक आजम के दौर में पहली मर्तबा तरावी की बाकायदा जमात हुई। आपकी शहादत हुई तो उस्मान गनी का दौर आया रजी अल्लाह तआला ने, उनके दौर में हुई। हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला ने को दौर आया, उनके दौर में हुई। और रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला ने रमजान के महीने में जब मस्जिद के आगे से गुजरे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, तरावी लोग पढ़ रहे हैं, अली शेरे खुदा की आंखों से आंसू जारी हुए और अपने दस्ते मुबारक उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा नव्विर कब्रा उमरा कमा नव्वरा मसाजिद अल्लाह बिल कुरान। ए अल्लाह उमर की कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे जिसने तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया, तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन में कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जो दीन के लिए माविन हो, जो दीन की तशहीर का बाइस हो, जो दीन के लिए मददगार हो, तो जितना सवाब अमल करने वाले को उतना ही उसके जारी करने वाले। बिला तजबी और तमसील और बिला शुबा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर में तरावी की बाकायदा जमात का एहतमाम किया जो उस वक्त से लेकर आज तक हो रही है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक होती रहेगी। कयामत तक इसका सवाब फारूक आजम की रूह मुबारक को पहुंचे, फारूक आजम की रूह मुबारक को पहुंचता रहे। और आप देख लें हकीकत है तरावी रमजान की शान है, तरावी रमजान की जान है, तरावी रमजान की पहचान है। अगर तरावी को रमजान से निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? चांद होता है ना, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबके रुख मस्जिद की तरफ, जितने भी हैं सब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है। कोई 10 तारीख को खत्म कर रहा है तो कोई 15 को, कोई 20 को, कोई 25 को, कोई 27 को, पूरे महीने हर तरफ से कलाम इलाही की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। और मैं ये कहता हूं अगर हम अल्लाह के गजब से बचे हुए हैं तो इसीलिए कि रमजान में कसरत के साथ कुरान पढ़ा जाए, इसकी बरकतें हैं, इसकी रहमतें हैं। तो ये तजदीदी काम हुआ या नहीं हुआ? फारूक आजम ने इश्तेहार किया और फिर सहाबा का इस पर इजमा हुआ कि हाँ ये होना चाहिए। वो काम उस वक्त से जारी है और इंशाअल्लाह ता कयामत जारी रहेगा। इसमें हम सब के लिए भी एक सबक है कि हम वो काम करें जो सदकाए जारिया हो। सदकाए जारिया, मस्जिद में आपने पैसा लगा दिया, मस्जिद में कोई मुसल्ला बिछा दिया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, जब तक मस्जिद कायम रहेगी सवाब जारी रहे। लोगों के लिए कुआं खुदवा दिया, लोग उससे पानी ले रहे हैं, जब तक पानी निकलता रहेगा लोग पीते रहेंगे सवाब जारी रहे। इसी तरह बहुत सारे काम हैं, तो ऐसे काम तलाश कीजिए जो सदकाए जारिया हो। हम दुनिया से चले जाएं लेकिन सवाब जारी रहे। और इसी में एक बात मैं और कह दूं, सरकार ने फरमाया औ वलदुन सौले, नेक औलाद भी सदकाए जारिया है। नेक औलाद, अगर आज अपने आपने अपनी औलाद की सही परवरिश की और उसको नमाजी बना दिया, आप दुनिया से चले जाएंगे और आप दुनिया में नमाज पढ़ेगी, सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा। आपने उसको सच बोलना सिखा दिया, आपने उसको दीन के अहकाम सिखा दिए, आपने उसके दिल में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दी, दुनिया से आप चले जाएंगे, वो इस दुनिया में अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, उनकी इताअत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, दीन पर चलेगा, वालदैन को कब्र में सवाब मिलता रहे। तो अपनी औलाद की सही परवरिश की देती। तो अब पता ये चला कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन उन्होंने तजदीदी काम किए, इज्तिहाद किया और फिर सहाबा का इजमा हुआ तो फिर उस अमल को जारी कर दिया। अब आइए थोड़ी सी सीरत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला की भी बयान कर दी जाए, क्योंकि हम उनके मुकल्लिद हैं, हम उनको अपना इमाम मानते हैं, हम उनके फिका पर अमल करते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना जी इमामों के पीछे मत जाओ, हदीस काफी है, कुरान काफी है, क्या जरूरत है कि तुम इमाम आजम अबू हनीफा को मानो, इमाम शाफी को मानो, इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को? हमने कहा सुनो, ये चारों इमाम जो हैं, इन्होंने कुरान से हटकर कोई बात नहीं की है। जितने मसाइल इन्होंने इस्तखराज किया मसाइल का, कुरान और हदीस से किया, उसके खिलाफ नहीं किया है। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ताबई हैं, और ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा। बहुत बड़ा इजाज़त है किसी सहाबी की जियारत करना। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने वाला सहाबी, सहाबी को देखने वाला ताबई, ताबई को देखने वाला तबे ताबई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना तमाम जमानों में बेहतर, मेरा जमाना तमाम जमानों में बेहतर। फिर फरमाया सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उनके बाद वाले, फिर उनके बाद वाले, फिर उनके बाद वाले। यानी मेरा जमाना तो सबसे बेहतर है, मेरे बाद किसका जमाना? सहाबा, फिर ताबई, फिर तबे ताबई, इसी तरह सिलसिला चल रहा है ना। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक एजाज ये है और एक खसूसियत यह है कि वो ताबई है। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की जियारत की, तीन सहाबा की जियारत, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह ताला, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला और हजरत इब्ने औफा रजी अल्लाह ताला। इन तीन की जियारत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने की, उनकी महफिल में बैठे, इसलिए वो ताबई हैं। यह उनका एक बहुत बड़ा एजाज। और अल्लाह ताला ने उन्हें जिहानत और फतानत बेपना अता फरमाई। 40,000 उलमा से उन्होंने फैज हासिल किया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 40,000 उलमा मशाइख, बड़े बड़े अपने वक्त के जय्यद उलमा, फुकहा, इमाम, उनसे फैज हासिल किया, उनसे अहदीस हासिल की, और निहायत एहतियात के साथ फिर अपने इस मसलक को, मसलक हनफी को मुदव्वन किया, और एक एक मसले को गौर करके, बहस मुबाहिसा करके, अहदीस और कुरान की रोशनी में फिर जाकर उसको लिखा। और आपकी एक शान ये भी है कि हजरत दाता गंजबख अली हिजवेरी नवरल्लाहु मरकदहु कशफुल महजूब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला के मजारे पुरानवार पर गया, तो वहां मैं जब बैठा तो मुझे नींद आ गई, एक कैफियत तारी हुई, नींद आ गई। तो मैंने ख्वाब में देखा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और एक बूढ़े शख्स को अपनी गोद में उठाए हुए, किसी बच्चे को नहीं, एक बूढ़े शख्स को हुजूर अपनी गोद में उठाए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने देखा, मैं हैरान हुआ, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन खुश नसीब है जिसको आपने अपनी गोद में लिया हुआ है? फरमाया सैयद अली, तुम नहीं जानते कौन है, ये तुम्हारा इमाम अबू हनीफा है, ये तुम्हारा इमाम अबू हनीफा है। फरमाते हैं उस वक्त से मैं समझ गया कि इमाम अबू हनीफा खुद नहीं चल रहे, हुजूर उनको चला रहे, सरकार उनको लेकर चल रहे। ये शान है इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने उनको बला का हाफजा, जहानत, फतानत अता फरमाई। एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी दो बीवियों को तलाक दे दी, दो बीवियां थी, और कमाल यह था कि दोनों को एक ही घर में रखा था, दो तलवारें तो एक घर में नहीं रह सकती, मुश्किल है, लेकिन खैर उसने ये किया, एक को ऊपर एक को नीचे, चलो फिर भी गुजारा हो सकता। अब क्या हुआ, साहब बहादुर जब आए तो ऊपर जाने लगे तो नीचे वाली ने टांग पकड़ी, कहां जा रहे हो, नीचे आओ। ऊपर वाली ने देख लिया, उसने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, उसने कहा नहीं ऊपर आओ। अब बीच में फंस गए, ऊपर वाली कहती है ऊपर आओ, नीचे वाली कहती है नीचे जाओ। अब ये बीच में, वो ऊपर हाथ पकड़ के खींच रही है तो ये नीचे टांग पकड़ के खींच रही, बड़े परेशान हुए, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में ऊपर देखा कहां ऊपर तेरे पास जाऊं तो तुझ पे तीन तलाक और नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे तीन तलाक।
चलो हो गया काम, उसने भी छोड़ दिया, इसने भी छोड़ दिया कि ये तो मामला गलत हो गया।
अब ये बीच में खड़े।
अच्छा लोगों का तरीका भी यही है कि पहले तलाक दे देंगे, बाद में कहेंगे जाओ उलमा से पूछो, कोई सूरत निकल आए। फिर कहेंगे सुना नहीं था, नहीं मेरा इरादा नहीं था, मैं गुस्से में था। तुमने कहा को खुशी में तलाक देता है कि बेगम आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ तुम्हें तलाक तलाक तलाक। कभी ऐसा हुआ किसी ने खुशी में तलाक दी? अरे गुस्से में ही तो दे दे, बाद में पछताते कि क्या हो गया, तीर कमान से निकल गया। इसीलिए कहते सोच समझ कर फैसला करो। बात औरतें शौहर को पकड़ के बैठ जाते, नहीं जी तलाक दो तलाक दो। अब गुस्से में अगर उसने कह दिया तब, अब बाद मर्द जो है वो कह देते। इसलिए दोनों को चाहिए एतदाद का रास्ता इख्तियार करें, गुस्सा ना करें, खास तौर पे इस मामले में, तलाक के मामले में बिल्कुल। ना औरत मांगे ना मर्द दे, सही है ना? कभी मर्द देना नहीं चाहता तो औरत जिद करती है तो हो जाता, गुस्से में उसने कह दिया तो हो गई, बाद में पछता रही है कि मैंने तो ऐसे ही कहा, और वो भी कहता है नहीं जी मैंने तो गुस्से में की थी बार। अब यहां मसला क्या हुआ, साहब बहादुर बीच में खड़े हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाली पे तलाक, नीचे आते हैं तो नीचे वाली पे तलाक। अब क्या करें, लोगों को भेजा जाओ उलमा से पूछो, कोई सूरत ऐसी निकले कि दोनों तलाक से बच जाए। तो उस दौर के जितने उलमा थे सब ने लिखा नहीं, एक न एक पे तलाक हो। भाई इसने कहा है ना ऊपर वाली पे तलाक, नीचे वाली पे तलाक, तो अब ये यहां थोड़ी खड़ा रहेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जिसके पास ये गया उसी पे तलाक। आखिर में मसला आया इमाम आदम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। आपने कहा मसला क्या है? कहा हुजूर मसला ये है कि इसकी दो बीवियां थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, ये आया जीने पे चढ़ा, नीचे वाली ने टांग पकड़ी नीचे आ जाओ इधर, ऊपर वाली ने हाथ पकड़ा ऊपर आ जाओ, इसको गुस्सा आया, इसने कहा मैं ऊपर तेरे पास जाऊं तुझ पे तलाक, नीचे तेरे पास आऊं तुझ पे तलाक। फरमाया किसी को तलाक नहीं होगी। लोग हैरान की कैसे, उलमा ने कहा भाई ये क्या हो गया, इमाम अबू हनीफा क्या करें? कहा नहीं किसी को तलाक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे ये बड़े बड़े उलमा इराक शाम और बगदाद कहां कहां के उलमा सबने लिख दिया। इमाम आदम ने फरमाया भाई मैं कह रहा हूं किसी को नहीं होगी तलाक, दोनों बच जाएंगी। कैसे? कहा इसके अल्फाज देखो, अल्फाज क्या है? कहा अल्फाज ये है कि ऊपर तेरे पास जाऊं तो तुझ पे तलाक और नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे तलाक। फरमाया ये कहा ना ऊपर तेरे पास जाऊं, ये कहा ना, और ये कहा नीचे तेरे पास, तो जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए किसी पे तलाक। ये है इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म। ये उनकी जहानत और फतानत, इस तरह के कितने वाकयात हैं। इसीलिए उस दौर के उलमा ने जब ये देखा और आपके दिए हुए फतवों को देखा कि सारे उलमाए शाम इराक एक तरफ और इमाम अबू हनीफा का फतवा और फैसला एक तरफ, उस दौर के उलमा ने कहा अल्लाह ने इल्म और फजल के जो दरवाजे इमाम अबू हनीफा के कल्ब और जहन पर खोले हैं खुदा की कसम किसी पर नहीं खोले, अल्लाह का खास करम है इनके ऊपर। और उस दौर के उलमा ने आपको इमाम आजम कहा, ये हमारे इमाम। एक इमाम ने फरमाया अगर इमाम आजम का इल्म जानना चाहते हो तो ये समझ लो उनका इल्म ऐसा था कि अगर वो लोहे को सोना बनाना चाहें तो अपने इल्म से ये साबित कर सकते थे कि ये सोना। एक मिसाल उन्होंने दी, इतना बड़ा उनका इल्म था और ऐसी उनकी जहानत और फतानत थी। और अल्लाह ताला ने तकवा और परहेजगारी भी उनको अता फरमाई। कपड़े की तिजारत करते थे, कपड़े की। एक खादिम आपकी दुकान पर था, कुछ माल ऐसा आया जो खराब था, थान आते ना कपड़े के, कुछ ऐसे होते जिसमें कोई दाग है कोई धब्बा है या वैसे कोई नक्श है कहीं से फटा हुआ है या कपड़ा बुनते में कोई उसमें खराबी हो गई। इमाम साहब ने फरमाया देखो ये जो थान रखे हैं इनमें खराबी है और इस तरफ जो रखे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त, लिहाजा ये वाले थान जब तुम बेचो तो जो खरीदने आए उसे पूरी पूरी कैफियत बता दे, जो ग्राहक आए ना उसे बता देना इसमें ये खराबी, ठीक
आप चले गए काम से, एक ग्राहक आया किसी दूसरे मुल्क से, उसने आकर पूछा, खादिम ने वो कई थान जो थे वो बेच दिए या एक थान बेचा, लेकिन उसका नुक्स उसका ऐब उसको नहीं बताया, वो लेकर चला गया। अब इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाए तो उसने खुश होकर बताया, हुजूर मैंने वो बेच दिया और बहुत अच्छे दामों में बिका। फरमाया, अच्छे दामों में कैसे बिका, उसमें तो खराबी थी। हाँ, मैंने बगैर बताए बेच दिया, देखिए हमें फायदा हुआ, अगर मैं बता देता तो वो कीमत कम देता, मैंने उसको नहीं बताया और उसने कीमत ज्यादा दे दी। आपको बड़ा अफसोस हुआ, पहले तो आपने लोगों को दौड़ाया कि देखो वो आदमी कहां तक गया है, जहां तक भी गया उसको वापस बुलाओ और उसको सही सूरत हाल बताओ। लेकिन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा, नहीं वो तो किसी और शहर से आया था, वो तो नजर भी नहीं आ रहा, हो सकता है वो रवाना हो गया। अब आप देखिए इमाम आजम का तकवा, वो एक थान जो उसका ऐब बताए बगैर बेचा था, ज्यादा पैसे लिए थे। इमाम आजम ने 70 थानों की कीमत जो थी अल्लाह की राह में खैरात कर दी, 70 थानों की कीमत अल्लाह की राह में खैरात कर दी और फिर भी माफी मांगी, मौला मुझे माफ कर दे, ये गलती हो, हालांकि आपसे नहीं हुई थी, उस खादिम से हुई। ये है आपका तकवा और आपकी परहेजगारी, आपका हिल्म और बुर्दबारी। देखी इमाम आजम के वालिद का इंतकाल हुआ तो एक बदबख्त शख्स जो आपसे बहुत ज्यादा बुग्ज रखता था आया आपके पास, आप एक रास्ते से गुजर रहे, उसने कहा, अबू हनीफा मैंने सुना है तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। हाँ, मेरे वालिद का इंतकाल, तो ऐसा करो कि अपनी मां का निकाह मुझसे कर दो। अब आप जरा सा गौर करें कि किसी के साथ ये मसला हो और ये लफ्ज कहा जाए तो उसके दिल पर क्या कैफियत गुजरेगी, कितना सदमा उसको होगा और कितना गुस्सा उसको आएगा कि वो चाहे कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। एक तो सदमा वालिद का कि वालिद का साया सबसे उठ गया, और दूसरे से बदबख्त वो ये कह रहा है कि अपनी मां का निकाह मुझसे कर दो। जितने लोग वहां खड़े थे सब गुस्से में आ गए और देखने लगे कि देखो अबू हनीफा क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उस हिल्म और बुर्दबारी के इमाम आजम ने एक नजर उसको देखा, आपकी आंखों में आंसू जरूर आए, लेकिन सिर्फ इतना फरमाया, तुम जानते हो कि इद्दत में किसी को निकाह का पैगाम देना जायज नहीं है, मेरी माँ की इद्दत पूरी हो जाए फिर हम देखेंगे। बस ये कह के आप आगे बढ़े, इतने में वो शख्स गश खा के गिरा और उसी वक्त मर गया, उसी वक्त मर गया। लोगों ने कहा, अबू हनीफा देखो वो तो मर गया। फरमाया, कौन? कहा, जिसने आपसे ये बदतमीजी की थी, ये गुस्ताखी की थी। फरमाया, हाँ ये समझ रहा था कि अबू हनीफा अकेला है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ। ये है हिल्म और बुद्धिबारी, ये है उनके मुकर्रब अल्लाह होने की दलील। अल्लाह की जात पर भरोसा था, हिल्म था, बुद्धिबारी थी, बदतमीजी और गुस्ताखी का जवाब भी इतने हिल्म और बुद्धिबारी से दिया कि अल्लाह ने खुद बदला ले लिया और उसी वक्त वो गिरा उसका इंतकाल हो गया। आपका तकवा ये था कि खलीफा वक्त ने आपसे कहा कि मैं आपको काजीउल कुजा यानी आज की जबान में चीफ जस्टिस उसका ओहदा मैं आपको देता हूं। इमाम आजम ने इनकार कर दिया। इनकार की दो वजह थी और बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। एक वजह तो ये थी कि जब मैं इसके कहने से बनूंगा तो ये जिसको चाहेगा अपनी मर्जी से मुझसे फैसला कराएगा, जिसको चाहे रिहा करवा दे, जिसको चाहे कैद करा दे। भाई होता ही ना, हाकिम वक्त ने बनाया, भाई हमने तुम्हें चीफ जस्टिस बनाया है, जो हम कह रहे हैं वही फैसला करो, यही होता है ना। आजकल भी यही हो रहा है कि रात में अदालतें खोलनी पड़े लेकिन फैसला करो, बहुत सारी चीजें होती है, सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। खैर बारह, एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह यह थी जो असल वजह थी, खशियत इलाही उनके दिल में रासिख हो चुकी थी कि अगर मुझसे कोई गलत फैसला अनजाने में हो गया तो कल कयामत के दिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूं। आप ये देखिए, और चीफ जस्टिस की तनख्वाह, चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल, चीफ जस्टिस का रहन सहन उस जमाने में क्या था, और बादशाह के कहने से बनते तो फिर क्या होता, दूसरे बादशाह तो यही होते, आगे पीछे सिपाही होते हैं, हटो और बच्चों की सदाएं होती हैं, जहां से गुजरते लोग देखते कि भी इमाम आजम गुजर रहे हैं, चीफ जस्टिस गुजर रहे हैं, फला गुजर रहा। कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसको गुस्सा आया, मेरा फैसला, मेरा हुक्म कोई टाल दे, ये नहीं हो सकता। और याद रखिए, जो दौलत के नशे में होता है, जो इख्तदार के नशे में होता है, उसके दिल में इल्म की कोई कदर नहीं होती, तकवा परहेजगारी की कोई कदर नहीं होती, अहलुल्लाह की, उलमा की कोई हैसियत नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहता है जो मैं कहूं वही हो जाए। उस खलीफा वक्त ने कहा इनको कैद कर दो। आपको कैद कर दिया गया। रोजाना दुर्रे आपकी कमर पर लगाए जाते थे, खून बहता था, बहते बहते पिंडलियों तक आ जाता था, फिर रोक दिया जाता, फिर पूछते बताओ क्या कहते हो, फरमाया मैं कबूल नहीं करूंगा। रोजाना इसी तरह होता रहा, न जाने कितनी तकालीफ आपने उठाई। और एक रिवायत के मुताबिक फिर आखिर में जहर का प्याला लाया गया और कहा इसे पी लो। इमाम आजम ने फरमाया नहीं, मैं खुदकशी नहीं करूंगा, मैं खुद अपनी जान को खत्म नहीं करूंगा, ये जहर है। खलीफा ने हुक्म दिया और जबरदस्ती वो जहर आपके मुंह में डाल दिया गया। जब आपने देखा कि जहर का असर शुरू हुआ, उसी वक्त अपनी पेशानी को जमीन में झुका दिया, सजदा किया, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, और आपकी रूह मुबारक परवाज़ कर गई। गोया आपने शहादत की मौत पाई। 40,000 से ज्यादा अफराद ने आपकी नमाज़ी जनाजा में शिरकत की और उसके बाद 3 दिन तक, और बाद लोगों ने लिखा कि 40 दिन तक आपकी कब्र अनवर की मट्टी से खुशबू आती रही। लोग वो मट्टी खुशबू के लिए ले जाते थे। और एक इमाम फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक, इमाम आजम के विसाल के बाद 3 दिन तक ये आवाज सुनी कि अब फिका रुखसत हो गया, अब कोई इमाम नहीं, फिका रुखसत हो गया। ये शांति इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इमाम के मुकल्लिद हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह हनफी रहेंगे। इसी पर कायम दायम रहेंगे। जो लोग शुकूक व शुबात पैदा करते हैं और ये कहते हैं किसी की तकलीफ की जरूरत नहीं, हमने इख्तिसार के साथ आयात अहादीस तो बहुत सारी हैं और उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ चंद अहादीस, चंद आयात रब्बानी आपके सामने पेश की और ये साबित किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा ने भी तकलीफ की इज्तिहाद किया और जो उनसे ज्यादा जानने वाले सहाबा थे उनके फतवे पर सहाबा अमल करते। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का फतवा मदीने शरीफ में चलता था, हजरत इब्ने अब्बास का फतवा चलता था, इसी तरह दीगर सहाबा थे। तो तकलीफ बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं और कसीर तादाद में बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं और हनफी हैं। इंशाअल्लाह कयामत में भी उन्हीं के झंडे तले उठे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इन फितनों से महफूज रखे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।